arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक।
राजनीतिक स्थिति।
कांग्रेस की स्थापना। 1857 की क्रांति के असफल होने के बावजूद भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष विद्यमान था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व पश्चिमी सभ्यता के संपर्क के फलस्वरूप एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो रहा था। इस वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रारंभ में कांग्रेस की नीति ब्रिटिश सरकार से सहयोग की रही। इसके नेता संवैधानिक तरीकों से भारतीयों को स्वशासन देने के पक्षधर थे। यद्यपि इन नरम पंथियों का ब्रिटिश शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उग्र राष्ट्रवाद का जन्म। 19वीं सदी के अंत तक कांग्रेस पर उदारवादियों का ही प्रभाव रहा। उन्हीं के प्रयास से 1892 ईस्वी में परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था। धीरे धीरे सरकार की नीति से उन्हें भी निराशा होने लगी थी। 20वीं सदी के आरंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय जीवन में नई भावनाओं का उदय हुआ। कांग्रेस के युवा वर्ग के नेताओं की उदारवादियों की भिक्षाटन विनयपूर्वक मांग की नीति में तनिक भी आस्था नहीं रही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि इस नए वर्ग के प्रमुख नेता थे। ये सभी उदारवादियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी कहलाए। उग्रवादी आंदोलन के कारण। भारत में उग्रवादी आंदोलन के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, संवैधानिक आंदोलन की विफलता। उदारवादियों यानी नरम दल के नेताओं की असफलता के कारण युवकों का वैधानिक कार्यों पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ पैर जोड़ने से स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी, इसके लिए शक्ति संचय करना होगा तथा क्रांतिकारी उपायों का सहारा लेना होगा। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि 1992 के अधिनियम द्वारा जो सुधार हुए थे वे पूर्णतः निराशाजनक थे। गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, फिर भी विधान परिषदों को कोई उल्लेखनीय अधिकार नहीं दिया गया था। अतः युवक वर्ग को ये विश्वास हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें क्रांतिकारी रास्ता अख्तियार करना ही होगा। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल और प्लेग। 1897 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किए वो अपर्याप्त एवं असंतोषजनक थे, फलतः भारतीय जनता में बड़ा क्षोभ था। इसी समय पूना एवं बंबई में भयंकर प्लेग फैला जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। सरकार की ओर से प्लेग की रोकथाम में एवं बीमारों की सहायता के लिए कुछ प्रयत्न किए गए, पर जिन फौजियों को इस कार्य के लिए भेजा गया था वे ही लोगों पर अनाचार ढाने लगे। इससे जनता में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। तीसरा, आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में चारों ओर आर्थिक असंतोष की लहर फैल गई थी और भारतीय जनता सरकार की आर्थिक नीति से अत्यंत क्षुब्ध थी। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, बेकारी की संख्या बढ़ रही थी और जनता कर के बोझ से कराह रही थी। अकाल और महामारी के कारण जनता की तबाही और भी बढ़ती जा रही थी। इन बातों को क्रांति की ओर प्रेरित किया गया। उन्हें विश्वास हो गया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण विदेशी शासन है। चौथा, लॉर्ड कर्जन का शासन। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासन काल में कुछ ऐसे अलोकप्रिय कदम उठाए जिससे ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध तेज हुआ और उग्र राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। उसका कहना था कि वो कांग्रेस की कष्ट रहित मृत्यु में पूरा सहयोग देगा। उसका सबसे अलोकप्रिय कार्य बंगाल का विभाजन था। इसके फलस्वरूप एक उग्र आंदोलन आरंभ हो गया। पांचवा, राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी भारत में उग्र आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुईं। 1896 ईस्वी में अबिसिनिया ने इटली को पराजित किया और 1905 में छोटे से जापान ने विशाल रूस को हराया। किसी यूरोपीय राष्ट्र पर किसी एशियाई राष्ट्र की ये पहली विजय थी। रूस की हार के बाद वहां चल रही क्रांति का उद्देश्य जार के निरंकुश शासन को समाप्त करना था, पर उसे कुचल दिया गया। इन घटनाओं का भारतीय राष्ट्रवादियों पर भी प्रभाव पड़ा। फलतः सारे देश में एक नई स्फूर्ति आ गई और समस्त देश ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए व्यग्र हो गया। इन सब कारणों से भारतीय राजनीति में उग्रवाद का जन्म हुआ और कांग्रेस पर उग्रवाद का प्रभाव अधिक पड़ा। कांग्रेस में एक नए दल का गठन हुआ जो गरम दल कहलाया। इस दल की लोकप्रियता अधिक बढ़ी। गरम पंथियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। बंगाल का विभाजन, बंग भंग योजना। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। बंगाल का शिक्षित वर्ग हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के आंदोलनों में आगे था। अतः लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। उसका तर्क था, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और शासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन आवश्यक है। पर उसकी इस योजना का असल रहस्य था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना तथा बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना। बंगाल के विभाजन को वहां के निवासियों ने अपनी राष्ट्रीय और संस्कृति पर आघात समझा। बंगाल के लोग इस विभाजन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन ने असंतोष और अशांति की धधकती आग में घी का काम किया। इससे बंगाल में एक तूफान फूट पड़ा जो शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। फिर उथल पुथल का जो दौर शुरू हुआ उसमें बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। स्वदेशी वस्तुओं का अर्थ है अपने देश का। इसका उद्देश्य देशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के साथ विदेशी मालों का बहिष्कार भी किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बड़ी बड़ी विरोध सभाएं हुईं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं की दुकानों की पिकेटिंग शुरू हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस विभाजन का विरोध बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने किया। बंगाल में उस दिन शोक दिवस मनाया गया। विभिन्न शहरों में सभाएं हुईं और प्रदर्शन किए गए। विभाजन को समाप्त करने के लिए वंदे मातरम गाना गाती हुई मंडलियां घूमने लगीं। गरम तथा नरम दल दोनों के नेताओं ने मिलकर विभाजन का विरोध किया। सारे देश में रोष फैल चुका था। स्वदेशी आंदोलन की लहर महाराष्ट्र तक पहुंची। इसी बीच क्रांतिकारियों ने सशस्त्र आंदोलन भी चलाया। 1905 और 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिष्कार आंदोलन में छात्रों की प्रमुख भूमिका रही। इस तरह 1905 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। लाला लाजपत राय स्वदेशी को देश की मुक्ति का साधन मानते थे। उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन लोगों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तथा पुरुषार्थ की भावना जगाएगा। उनका विश्वास था कि स्वदेशी आंदोलन से ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार हम अपनी पूंजी, अपने संसाधनों, अपने श्रम और अपनी ऊर्जा तथा प्रतिभा का उपयोग धर्म, रंग या जाति का भेदभाव किए बिना कर सकते हैं। उनका विचार था कि स्वदेशी को संयुक्त भारत का साझा धर्म बन जाना चाहिए। बहिष्कार आंदोलन के बारे में लाला लाजपत राय का कहना था कि सरकार की प्रतिष्ठा ही प्रमुख वस्तु है और विदेशी बहिष्कार आंदोलन उस प्रतिष्ठा की जड़ पर चोट करता है। उनके शब्दों में, वो भ्रामक वस्तु जिसे वे प्रतिष्ठा कहते हैं सत्ता से अधिक शक्तिशाली है और हम बहिष्कार द्वारा इस पर चोट करना चाहते हैं। हम सरकारी भवनों से अपना मुंह मोड़ना और उसे जनता के झोपड़ों की ओर घुमाना चाहते हैं। इसी बीच सरकार ने दमन का सहारा लिया। उन स्कूलों की मान्यता छीन ली गई तथा सहायता बंद हो गई जहां के छात्रों ने बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया था। जुलूसों पर लाठीचार्ज होने लगे, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विभिन्न तरीकों से जनता में आतंक फैलाने के प्रयास किए गए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गाना भी अपराध घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनके संपादकों को सजाएं दी गईं। अनेक नेता जेल में बंद कर दिए गए। इसी समय तिलक ने लिखा था, दमन बस दमन है, अगर वही कानून है तो हम शांतिपूर्वक रहकर इसका विरोध करेंगे, और अगर ये गैर कानूनी है तो इससे गैर कानूनी ढंग से निपटा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कांग्रेस में दो दल, नरम दल और गरम दल, जिन्हें नरमपंथी और उग्रपंथी कहते थे। स्वदेशी आंदोलन के पूर्व ही कांग्रेस में दो दल हो चुके थे, नरम दल एवं गरम दल। कांग्रेस के पुराने नेता शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से अपनी मांगें पूरी कराना चाहते थे। ऐसे लोग नरम दल के समर्थक कहलाए। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि शामिल थे। इसके विपरीत दूसरे वर्ग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। अरविंद घोष तथा खुदीराम बोस भी गरम दल के समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक को उनके राजद्रोही लेखों और भाषणों के लिए 18 महीने की कड़ी सजा मिली। इस राष्ट्रवादी ने प्रचार कार्य के उद्देश्य से मराठी में केसरी नामक पत्र निकाला तथा राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए गणपति तथा शिवाजी उत्सवों का फिर से आयोजन करना शुरू किया। उन्होंने धार्मिक योजनाओं के माध्यम से भारतीयों से एकजुट होने का आह्वान किया। इसी क्रम में बंगाल के लोगों ने काली पूजा की प्रथा आरंभ की। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के तरीकों में नरम पंथियों एवं गरम पंथियों में काफी मतभेद था। इस संबंध में तिलक का ये विचार था, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। नरमपंथी समझते थे कि अधिकार सरकार को बातों से प्रभावित करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि हम समझते हैं कि केवल भारी दबाव डालकर ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। नरमपंथी संघर्ष के लिए जनता को, खासकर युवकों को आगे लाए, यही उनकी एक प्रमुख देन थी। कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के ही हाथों में रहा। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। वहां नरम दल और गरम दल वाले आपस में टकरा गए। फलतः 1916 तक गरम दल वाले अपना कार्यक्रम अलग चलाते रहे। उस वर्ष दोनों दलों ने फिर मिलकर एक साथ काम करने का निश्चय किया। क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस के गरम दल वालों में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था। वे संवैधानिक आंदोलनों में कतई विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करके वे पूरे सरकारी तंत्र पर प्रभाव डालकर उनका मनोबल तोड़ सकेंगे और इस तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वे किसी भी साधन का प्रयोग उचित समझते थे। क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र तथा पंजाब में थे। ये क्रांतिकारी संगठन बदनाम सरकारी अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा सरकारी गवाहों का उग्र विरोध करते थे। वे अपने आंदोलन को चलाने के लिए ब्रिटिश शासन का खजाना लूटकर धन एकत्र करते थे तथा अंग्रेजों के हथियार लूटते थे। इनके द्वारा मुजफ्फरनगर के बदनाम जज किंग्स फोर्ड की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में दो महिलाएं भी थीं, जो मुजफ्फरपुर के एक वकील पिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री थीं। बम के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। चाकी ने वहीं आत्महत्या कर ली, पर खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इस घटना के दो महीने बाद ही कलकत्ता में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना का पता लगा, जिसमें अरविंद घोष और अन्य युवक गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना सामान्यतः अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कनाई लाल और सत्येंद्र को फांसी की सजा मिली, अरविंद घोष छोड़ दिए गए। लेकिन क्रांतिकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुनः दिल्ली में एक राजकीय जुलूस में हाथी पर जाते हुए वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, जिसमें वो घायल हो गया। पंजाब के सरदार अजीत सिंह, भाई परमानंद, बालमुकुंद और लाल हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्याम कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर प्रमुख थे। क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका में भी चले। इनमें सबसे प्रमुख संगठन गदर पार्टी था। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। इन संगठनों ने भारत के क्रांतिकारियों के लिए धन जमा किए तथा भारत में चोरी छिपे हथियार भेजने का भी प्रयास किया। दमन और सुधार। क्रांतिकारियों से घबराकर सरकार ने जबरदस्त दमनकारी उपायों से काम लिया। ये दमन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में तेज था। 1906 में राजद्रोह सभा का कानून बनाया गया। इसके अनुसार सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाली सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार विद्रोह भड़काने वाली सामग्री छापने पर समाचार पत्रों के संपादकों को सजा देने के लिए अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए। अनेक पत्र पत्रिकाएं बंद कर दी गईं। अनेक नेता कैद कर लिए गए। कुछ को निर्वासित कर दिया गया। केसरी में दो लेखों के प्रकाशन के कारण लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के साथ साथ सरकार ने सुधार की नीति भी अपनाई। इसी उद्देश्य से 1909 में मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा की गई। मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पास किया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं दी गईं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही कुछ और निर्वाचित सदस्यों की भी व्यवस्था की गई। पर इन निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जमींदारों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता था, जनता द्वारा नहीं। मुसलमानों को खुश करने के उद्देश्य से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था भारत के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। ये व्यवस्था बांटो और राज करो की साम्राज्यवादी नीति के तहत अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता बढ़ती गई और अंततोगत्वा 1947 में भारत का विभाजन होकर रहा। नरमपंथी नेताओं ने मार्ले मिंटो सुधारों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया। उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया, पर उन्होंने इन सुधारों को लागू करने में सरकार का साथ देने का फैसला किया। लेकिन गरमपंथियों ने इन सुधारों का कड़ा विरोध किया। मुस्लिम नेताओं ने भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की निंदा की। 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने कहा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ पूरे भारत का ही विभाजन है और ये बंगाल के विभाजन से अधिक खतरनाक है। मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म। आंदोलनों को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का बीज बोने की नीति अपनाई। फूट डालो और शासन करो। रोमनों के इस पुराने सूत्र का उपयोग अंग्रेजों ने रोमनों की तुलना में अधिक सफलता से किया। उन्होंने मुसलमान नेताओं को सलाह दी कि उनका कल्याण हिंदुओं से अलग रहने में ही है। उनके प्रयासों से मुस्लिम समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन बताने लगा और कांग्रेस से अलग रहने लगा। मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत के प्रोत्साहन से आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। आगा खां एक धार्मिक नेता थे। वे काफी धनी व्यक्ति थे और प्रायः यूरोप में ही रहते थे। शिष्टमंडल में उनके साथ ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। फलतः 3 महीने के भीतर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां उसके प्रमुख सूत्रधार थे। मुस्लिम लीग के कुछ उद्देश्य थे। पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जागृत करना तथा सरकार के प्रति कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मान के साथ सरकार के समक्ष उपस्थित होना। तीसरा, अन्य सुधारों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे सांप्रदायिकता और भी बढ़ गई। फिर भी अधिकाधिक मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन शुरू किया। इससे मुस्लिम समाज में चेतना आई। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसलमान भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल हुए। सर सैयद अहमद खान ने सरकार और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट। 1913 में मुस्लिम लीग ने भी अपना उद्देश्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय एकता कायम करने की चेष्टा की। 1916 में कांग्रेस और लीग में एक समझौता हो गया जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। कांग्रेस लीग योजना तैयार हुई जिसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में मुसलमानों के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के निर्णय को स्वीकार किया। फिर कांग्रेस और लीग दोनों ने मिलकर सरकार से मांग करने का निर्णय किया। पहला, विधायी परिषदों में अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। दूसरा, इस विधायी परिषद को पहले से अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। तीसरा, वॉयसराय की कार्यकारिणी में कम से कम आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। इस युद्ध का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि इंग्लैंड राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित हो रहा है। युद्ध छिड़ने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि युद्ध के बाद धीरे धीरे भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जाएगा। भारतीय जनता इससे अत्यधिक प्रभावित हुई, अतः सबने युद्ध में सरकार का पूरा सहयोग किया। गरम दल और नरम दल में मेल। जून 1914 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से छूटकर भारत आए। इसी वर्ष आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुईं। श्रीमती एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल में मेल कराने का प्रयास किया। गरम दल और नरम दल में मेल हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के कारण भारतीय राजनीति के जीवन में एक नई हलचल शुरू हुई। होम रूल आंदोलन। 1916 में लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। इसी वर्ष श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने समाचार पत्र मराठा द्वारा किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने समाचार पत्रों द्वारा इस आंदोलन का व्यापक प्रचार किया। शीघ्र ही ये आंदोलन सारे देश में फैल गया। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य जनता के स्वशासन की भावना का प्रचार करना था। इसकी कार्य पद्धति शांतिमय और अहिंसात्मक थी और इसमें सरकारी कानूनों को तोड़ने या विरोध करने का स्थान नहीं था। इसका लक्ष्य था प्रचार द्वारा सरकार पर अपनी मांगों का प्रभाव डालना। आंदोलन का आरंभ और प्रचार। होम रूल आंदोलन का तीव्र गति से प्रचार हुआ जिससे एक दो वर्षों के अंदर ही इसकी काफी प्रगति हुई। तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये आंदोलन लखनऊ के साथ साथ महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक तक फैल गया। जनता में स्वशासन प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में इस आंदोलन को आश्चर्यजनक सफलता मिली। आंदोलन का दमन। इस आंदोलन की प्रगति देखकर सरकार को घबराहट हुई और उसने इसके दमन का निश्चय किया। तिलक को राजनीतिक कार्यकलाप बंद करने का आदेश दिया गया तथा श्रीमती एनी बेसेंट को नजरबंद कर लिया गया। उनका पत्र न्यू इंडिया जब्त कर लिया गया। तिलक के आंदोलन करने की धमकी देने पर सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट को छोड़ दिया। उसी समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें कहा गया कि भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन सौंपा जाएगा। इस घोषणा से होम रूल आंदोलन कुछ शिथिल पड़ गया। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। एक संवैधानिक एवं प्रचारात्मक आंदोलन होने के कारण भारतीय जनजीवन इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ। युद्ध का अंत और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। युद्ध का अंत। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। युद्ध के बाद ऐसी घटनाएं घटी जिनसे भारतीय जनता की चेतना अत्यधिक प्रभावित हुई तथा उसे और भी उत्साह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने की प्रेरणा मिली। युद्धकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने भारतवासियों पर अनेक प्रकार के कर लगाए। इससे आम जनता की स्थिति खराब हो गई। युद्ध काल में स्थापित अनेक कारखाने बंद कर दिए गए। इससे उनमें कार्यरत श्रमिक बेकार हो गए। फलतः श्रमिकों के घर असंतोष व्याप्त हो गया। इन्फ्लुएंजा की महामारी से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। युद्ध के बाद अनेक देशों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र गति से जागृत हुई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के निरंकुश शासन तंत्र नष्ट हो गए। इसका विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना हुई। सोवियत संघ ने समाजवाद की स्थापना की। सोवियत संघ की सरकार ने पराधीन देशों को सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता ही नहीं दी, वरन उसके स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित भी किया। एशिया में जो देश उसके अधीन थे सबको मुक्त कर दिया गया। 1919 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मॉन्टेग्यू की घोषणा के आधार पर भारतीय शासन में सुधार के लिए एक कानून बनाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इससे भारतीय नेताओं एवं जनता सभी को बड़ी निराशा हुई। भारतीयों को ये आशा थी कि उन्हें शासन में अधिकार मिल जाएगा, पर ये आशा पूरी नहीं हुई। फलतः राष्ट्रीय आंदोलन में और भी तेजी आ गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इंडिया काउंसिल के भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। दूसरा, भारतीय सचिव को भारतीय कोष के स्थान पर ब्रिटिश राजकोष से वेतन दिया जाने लगा। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। केंद्रीय धारा सभा का स्वरूप बदल दिया गया। अब एक सदन की जगह 2 सदनों की व्यवस्था की गई। निचले सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली और ऊपर के सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया। निचले सदन के सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। इसमें 103 निर्वाचित सदस्य और 42 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। इसमें 33 निर्वाचित सदस्य तथा 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। पांचवा, प्रांतों में सिर्फ एक ही सदन की व्यवस्था थी। इसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसलिंग रखा गया। इसके सदस्यों की संख्या प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी। अतः विभिन्न प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 23 और अधिकतम संख्या 139 निश्चित की गई थी। छठवां, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित और हस्तांतरित। भूमि कर, सिंचाई, न्याय, पुलिस, राजस्व, फैक्ट्री, जेल आदि संरक्षित विषय माने गए। इनका प्रबंध गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की सहायता से करता था तथा काउंसिल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती थी। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी। स्थानीय शासन, शिक्षा, औद्योगिक उन्नति, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि हस्तांतरित विषय माने गए, जिनका प्रबंधन गवर्नर जनरल अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता था। ये मंत्रिमंडल प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। यद्यपि अधिनियम के मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, परंतु व्यवहार में 2 या 3 मंत्री होते थे जिन्हें नियुक्त तथा पदच्युत करने का अधिकार गवर्नर को था। मंत्री विधानसभा से मनोनीत किए जाते थे। गवर्नर मंत्रियों के सभी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था। सातवां, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति समाप्त कर दी गई। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पर वोट का अधिकार संपत्ति के आधार पर ही दिया गया। आठवां, संप्रदायों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जारी रही। नौवां, भारत सचिव एवं उसके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान इंग्लैंड के राजस्व से करने की व्यवस्था की गई। दसवां, 10 वर्षों के पश्चात इस सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस सुधार अधिनियम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही निराशा हुई तथा दोनों ने ही इसकी निंदा की। ये सुधार अधिनियम स्वराज की मांग से बहुत दूर था, फलतः जनता को भी बड़ा असंतोष हुआ। उसने आंदोलन को और तेज करने का निश्चय किया। गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वे संस्कृत, अंग्रेजी एवं मराठी भाषाओं के प्रकंड विद्वान थे, उच्च कोटि के पत्रकार तथा महान देशभक्त थे। उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। वे 1890 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने की उन्होंने बड़ी चेष्टा की। उन्होंने वहां के नवयुवकों में आत्मविश्वास, आत्मबलिदान और आत्मनिर्भरता जागृत करने के उद्देश्य से लाठी क्लबों, अखाड़ों तथा गौवध विरोधी समितियों की स्थापना की। 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव को संगठित किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों था। इसके बाद राजनीतिक उद्देश्य से उन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य ये था कि लोग शिवाजी के आदर्शों पर चलकर भारत को अंग्रेजों के हाथ से छीन लें। 1896 के अकाल और 1897 के प्लेग के दिनों में सच्ची भावना और देशभक्ति का प्रमाण इन्होंने दिया। 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय उन्होंने उदारवादी दल की नीति तथा सरकार की दमन नीति की कटु आलोचना की। उन्होंने भारतीयों का उत्साह बढ़ाया तथा उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की। बंग भंग आंदोलन के बाद वे विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उग्रवादी आंदोलन का संचालन करने लगे। उनका निश्चित मत था कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति से स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव नहीं है। उनका कहना था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा लगाया और बताया था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा लगाया था और बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। परंतु तत्कालीन अधिकांश नेता उदारवादी थे, अतः दोनों में मतभेद हो गया। ये मतभेद 1907 के सूरत कांग्रेस के समय इतना तीव्र हो गया कि दोनों यानी गरम दल और नरम दल के नेताओं में फूट पड़ गई। तब वे कांग्रेस के बाहर आ गए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आवाज उठाने के दंड में उन्हें निर्वासित कर मांडले बर्मा के जेल भेज दिया गया। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास की रचना की। 1915 में नरम विचार वाले नेताओं तथा गरम दलीय विचार वाले नेताओं में मेल होने पर वे पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 1920 में इनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय। गरम दलीय विचारधारा में विश्वास रखने वाले लाला लाजपत राय दूसरे महान नेता थे। उनका जन्म 28 फरवरी 1865 को जगराव, जिला लुधियाना में हुआ था। उन्होंने देश प्रेम से प्रेरित होकर एक सच्चे देशभक्त के रूप में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया। कुछ दिनों तक उन्होंने हिसार तथा लाहौर में वकालत भी की। डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय को ही जाता है। वे 1880 में कांग्रेस के सदस्य बने और अंतिम समय तक बड़ी लगन से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे। साहस और वीरता के अद्वितीय गुण के आधार पर ही उन्हें पंजाब केसरी, शेरे पंजाब कहा जाता था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर कार्य किया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति इतिहास प्रसिद्ध है। 20 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के एक गोरे अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़ी बेदर्दी से लाठी से प्रहार किया, जिसके कारण 17 नवंबर 1918 को उनका देहांत हो गया। विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल स्वदेशी आंदोलन के एक महान नेता थे। उनका जन्म 1858 में सिलहट यानी असम में हुआ था। 1887 में वे कांग्रेस में सम्मिलित हुए। वे भी तिलक, लाजपत राय और अरविंद घोष की तरह उग्रवादी थे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे मातरम इत्यादि पत्रिकाओं द्वारा स्वदेशी उद्योग और स्वदेशी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अरविंद घोष पर चलाए जा रहे मुकदमे के दौरान उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया गया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फलतः उन पर अदालत की मानहानि का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 महीने के कारावास का दंड दिया गया। जेल से छूटने के बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां वे लगभग 3 वर्षों तक रहे। वहां से लौटने के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि गांधी जी के शांतिपूर्ण नीतियों में उन्हें आस्था नहीं थी। 1932 में उनका देहांत हो गया। अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे क्रांतिकारी दल के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने भी बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। उनका भी ये विचार था कि भारत को भिक्षावृत्ति से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी दल का संगठन किया। वे उसके प्रधान संचालक थे। इसी काम के लिए पूना में बैठे हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और कलकत्ता में बैठे हुए अरविंद दोनों में बड़ा गहरा संबंध था। उन्होंने न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक पत्रिकाओं का संपादन कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र किए। स्मरणीय बिंदु। उग्र राष्ट्रवाद का जन्म। 20वीं सदी के आरंभ होते ही भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे भारत में क्रांतिकारी चेतना का विकास हुआ तथा उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि इसी नए वर्ग के नेता थे। ये सभी उग्र राष्ट्रवादी कहलाए। बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में हिंदू मुसलमानों में फूट डालने एवं बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा की। कांग्रेस में 2 दल। इसी समय कांग्रेस में 2 दल हो गए, नरम दल और गरम दल। क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस के गरम दल में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस वर्ग के नेता किसी भी साधन का प्रयोग उचित समझते थे। वे सभी क्रांतिकारी कहलाए। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ किया। क्रांतिकारी आंदोलन का सरकार ने बड़ी बेरहमी से दमन किया। मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार भारतीयों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की गईं। मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में कांग्रेस और लीग में एक समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद युद्ध में भारतीयों ने सरकार का पूरा सहयोग किया। नरम दल और गरम दल में मेल। प्रथम विश्व युद्ध के काल में परिस्थितिवश नरम दल और गरम दल में मेल हो गया। होम रूल आंदोलन। 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ। सरकार ने इस आंदोलन का भी दमन किया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा के आधार पर भारतीय शासन में सुधार के लिए 1911 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष आदि गरम दल के प्रमुख नेता थे।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।